संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में भी वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में।
असुचि भावना की चर्चा चल रही है, जिसमें शरीर चाहे वो अपना हो चाहे वो स्त्री पुत्रादिक का हो, वो मलमूत्र का बना हुआ है, गंदे पदार्थों से बना हुआ है और अत्यंत मलिन पदार्थ है। और हमारा भगवान आत्मा अत्यंत परम पदार्थ, परम पवित्र पदार्थ है, इन दोनों का मेल कहाँ? शास्त्रों में शरीर और स्त्री पुत्रादिक से एकत्व ममत्व तोड़ने के लिए और राग कम करने के लिए, राग को छुड़ाने के लिए, इनकी अनित्यता, असरणता, असारता, भिन्नता और अपवित्रता की चर्चा की। और अपना भगवान आत्मा तक अपनी दृष्टि लाने के लिए, उसमें अपना स्थापित करने के लिए, उससे हमारा राग जुड़े और उसका ही हम ध्यान करें, इस भावना से आत्मा की नित्यता, शरणभूतता, सार्थकता, अभिन्नता और परम पवित्रता की चर्चा इन 12 भावनाओं में बहुत गहराई से की जाती है। और ये सिर्फ इसलिए की जाती है कि ये निरंतर हमारी भावना हमारे अंदर में बहती रहनी चाहिए। ये तो 6 भावना नाम दे दिया है, लेकिन हम एक विचार करें गद्य के रूप में तो ये बराबर एक क्रमिक विकास है कि इनका स्वरूप का चिंतमन ही है। ख्याल में है ना? क्यों पहले कहते हैं कि एक क्षण रहेगा चला जाएगा, तो जाने वाले से क्या प्रेम करना, जाने वाले से अपना अपन स्थापित करोगे तो रोने के अलावा क्या हाथ लगने वाला है। ये अनित्यता बता करके ये बात का ज्ञान कराना चाहते हैं। एक किसी लड़की ने किसी 90 वर्ष के बुढ़े से शादी की, क्योंकि वो अरबपति था। हाल में है ना? वो बहुत साधारण घर की थी, गरीब थी, पैसा उसने कभी देखा ही नहीं था। तो उसने कहा ठीक है, जो होगा सो होगा, यानी कब रहने की, उठने बैठने, खाने पीने की सुविधा तो एकदम एक बन मिलेगी, इतनी चीज का लाभ तो मिलेगा। इस भावना से उसने शादी की और वो 1 साल में ही विधवा हो गई। विधवा हो गई तो रोने लगी, तो लोगों ने समझाया कि तुम क्यों रोती है, तूने तो मानो वैदभ के गले में ही बरमाला डाली थी। जब 90 वर्ष के बुढ़े से शादी की, जो बीमार था उससे शादी की, तो विधवा होने के लिए ही तूने ये शादी की थी। तू उस दिन नहीं जानती थी कि, और इसलिए की थी कि मैं कम से कम वैभव की प्राप्ति हो जाए मेरे को, तो वे तो तेरे को हो ही गई ना, वो तो अब तेरा है ही सब माल, तू उसकी पत्नी है तो उत्तराधिकार में वो सारा माल तेरा ही है, तो अब रोती क्यों है? क्या नहीं विधवा हो गई तो रोने, तो तूने तो रोने के गले में ही बरमाला डाली है। तो जैसे वो बरमाला डालना मूर्खता है ना, कि ऐसी मूर्खता कौन करता होगा? अब आज के जमाने में तो कोई नहीं करता है। कहते हैं आज के जमाने में कौन नहीं करता है कि ये जो शरीर है ये किसी भी क्षण विघटित हो जाने वाला पदार्थ है, क्षण भंगुर है, और विघटित होगा तो दुनिया की कोई ताकत इसे बचा नहीं पाएगी। असरण है, बिल्कुल असार है। और ऐसे शरीर में तूने एकत्र स्थापित किया, माने इसके गले में बरमाला डाली, इसे अपना माना, तो तूने अपने वैधव्य के गले में ही बरमाला डाली है, तो तेरे हाथ में रोने के अलावा और क्या होने वाला है? इस तरह से कि ये जो पहले क्षणभंगुरता की बात बताई, तो वो जैसे मानो कहने लगी विधवा कि चलो 1 साल 2 साल जिंदा रहेगा, तो 2 साल तो मैं इसका गृहस्थी का सुख भोग लूंगी, तो उसके लिए बताया कि पागल हो गई है, ये शरीर जितने काल तक रहेगा उतने काल तक तो बढ़िया रहेगा, कि ऐसा महागंदा पदार्थ है ये, जैसा शरीर है इसको खोल करके इसकी सारी सामग्री तेरे एक कमरे में भर दी जाए मकान में, और फिर कहा कि तुम इस मकान में ठहरो, बोलो कितने लोग ठहरने को तैयार होंगे, ये हड्डियां पड़ी हो, अलग मांस पड़ा हो, कमड़ी पड़ी हो, खून पड़ा हो, क्यों? और उस कमरे में कोई किले ठहरने के लिए कहे तो तू एक सेकंड भी ठहरना चाहता है? नहीं तो ठहरना चाहता है, तो तू इस शरीर में ही जितने काल तू, वो कहता ना कुछ काल तो मैं मजा लूटे ही लूं, तो उसके लिए ये बताया जाता है कि ये तो अत्यंत अपवित्र पदार्थ है, ये एक सेकंड भी रहने लायक जगह नहीं है। क्यों? तो ये तो देह की अपवित्रता की बात की, और जो अभी आपको हमने कहा था कि देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिनमल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी, तो अपन ने ये बात यहां पर समझी थी कि जो भी पदार्थ आएगा, कहा ना हलुआ खाएं तो उसकी क्या दुर्दशा हो जाती है, सब उदाहरण देके समझाई थी बात, तो जो जो पदार्थ इसके संयोग में आएगा वो अत्यंत मलिन हो जाएगा ना, ये बात नक्की है और पक्की है ना? कि नहीं, एक चीज ऐसी भी है कि जो इसके संयोग में अनंत काल तक रही तब भी वो अपवित्र नहीं हुई, वो कौन है, वो क्या चीज है? हम जरूर उस चीज को जानना चाहेंगे, वो कहां मिलती है? इस देह के संयोग में जो वास्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी, किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। अरे भाई, एक चीज ऐसी है और कोई नहीं है, वो तू ही है, तेरा आत्मा ही है, कि अनंत काल से इस देह के संयोग में रहा, इस देह के में ना रहा हो तो दूसरी देह के में रहा हो, लेकिन अनादि काल से लेके आज तक ऐसा एक समय भी कभी नहीं आया कि जब ये देह से रहित हो गया हो, एक देह को छोड़कर दूसरी देह में जाता है तो बीच का जो काल है तब तो देह से रहित हो जाता है ना? कि नहीं, वहां भी दो सिपाही, दो शरीर, कालमान शरीर और तेजस शरीर, इसके साथ चेता ही रहता है, तो अनंत काल से लेके आज तक, अनादि काल से लेके आज तक अनंत काल बीत गया और उसके संयोग में इस आत्मा रह रहा है, और स्वभाव से देखो तो परम पवित्र है। इस देह के संयोग में निर्मल रहा जो आत्मा, वह धेय है, सिद्धेय है और गे भी वह आत्मा, वह आत्मा ही ध्यान करने लायक है, वह आत्मा ही ज्ञान करने लायक है, वह आत्मा ही सिद्धांत करने लायक है, और वो और कोई नहीं, वो तू है। तूने वो जो परम पवित्र पदार्थ है जो तू स्वयं है उसमें तो अपनापन तोड़ दिया, उससे तो तूने अपनापन तोड़ दिया, और जो परम अपवित्र पदार्थ है तेरे संयोग में है, जिसकी जेल में गंदी कोठरी में तुझे रहना पड़ा है, उसमें तूने अपनापन कर लिया है, और उसकी सेवा में सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, जो साहब घर से 25 कदम पर आधा फल्लांग भी दूर नहीं है ऑफिस, तो बिना कार के ऑफिस नहीं जाते हैं, पैदल नहीं जा सकते हैं, 5 मिनट का रास्ता है पैदल का, तो भी गाड़ी चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, साहब पैदल आए, बेई साहब सुबह 5 बजे उठकर भयंकर सर्दी में 5 किलोमीटर टांगा जैसे के घोड़े जैसे हांफते हुए दौड़ते हमने यूनिवर्सिटी में देखे हैं, यहाँ पर बगीचे में देखे हैं। आपको भी देखना हो 5 बजे का वो दृश्य तो जाके देख लेना सुबह। बड़े बड़े IAS ऑफिसर और मिनिस्टर और जो भी हैं वहां दौड़ते हुए दिखाई देंगे। क्यों, काय के लिए? सुबह 5 बजे 12 भावनाएं समझने की क्लास हो तो कितने लोग आएंगे? एक भी टाइम है सुबह 5 बजे? क्यों? और वहां घूमने के लिए दौड़ते हुए पसीने से लथपथ हो जाए, हांफते हुए लोगों को देख लीजिए, काय के लिए? आत्मा के लिए या देह के लिए? आत्मा के लिए तो यहां आना था। और कितनी गोलियां हमने बनाई हैं, काय के लिए? इस देह की सुरक्षा के लिए। वे गोलियां भी जो हमारी बंदूक की नली में होती हैं, वो काय के लिए हैं? बोलो। आप 4 बॉडीगार्ड रखते हो बंदूक वाले, उनके गोलियों से लैस 24 घंटे, वो काय की रक्षा के लिए रखते हो? देह की रक्षा के लिए ना। और दिन भर में 10-10 गोलियां खा जाते हो, वो काय के लिए खाते हो? क्यों? गोली खाना ना पड़े इसके लिए रखते हैं ना वो। तो गोली नहीं खाते हैं काय के लिए? देह की रक्षा के लिए। और गोलियां खाते हैं काय के लिए? देह की रक्षा के लिए, भक्ष और अभक्ष। ऐसे उस अपवित्र देह में इतनी सुरक्षा का इंतजाम के बाद जिसके रहने की कोई गारंटी नहीं है, जिस आदमी ने अपना अपनापन स्थापित कर लिया हो, उसके दुख का अंत कभी होने वाला है? क्योंकि ये विघटित होने वाली है, ये सड़ने गलने वाली है, समझे ना? तो इसलिए कहते हैं किसी तरीके से इस देह से इसका एकत्वमत टूट जाए, राग छूट जाए, इसके लिए 12 भावनाएं रोजाना पढ़ने की चीज है। 24 घंटा ये चिंतन धारा हमारे चित्त में रहना चाहिए। कंठ से 12 भावना बोले चाहे नहीं बोले छंदों में, लेकिन ये धारा हमारे दिमाग में 24 घंटे बहनी चाहिए। बहेगी तो आत्मा का अनुभव होकर सम्मर्शन के दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ये समझ लीजिए एक तरह से प्रायोग उपलब्धि का एक रूप है कि निरंतर अंदर अंदर की रुचि, अंदर की रुचि जागे, देह की रुचि घटे और आत्मा में रुचि बढ़े, देह और देह के संबंधियों से रुचि घटे। आचार्यों को कोई देह से कोई द्वेष नहीं था, और आपकी पत्नी और बाल बच्चों से भी कोई द्वेष नहीं था। शांतिलाल जी ये 24 घंटा भड़काते हैं कि सब धूर्तों की टोली है, इन पर भरोसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्यों, क्या बिगाड़ा है आचार्यों ने, हमारे बाल बच्चों ने आचार्यों का, जो उनके विरुद्ध हमारे बच्चों के विरुद्ध हमारे कान भरते रहते हैं? क्यों कह इनसे राग तोड़ो, इनसे राग तोड़ो, और हम बराबर उनको परम पवित्र भाव से सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? श्रद्धा के साथ सुनते हैं, लेकिन राम कसम रंच मात्र भी राग कम हुआ हो तो छाती पे हाथ रख के देख लेना। बोलो रमेश जी, हुआ है? बहुत चाहते हैं कि तीनों बेटे यहां आवे, देवी प्रवचन सुने, देवी धर्म के मार्ग में लगे हैं, और ज्यादा कहो तो अपने बाप को पागल समझने लगे कि दिमाग खराब हो गया है, इन्हें तो अकेला एक आत्मा ही आत्मा सूझता है। तो रंच मात्र भी उन्होंने हमारी नहीं सुनी, क्यों? तो भी हमारा राग रंच मात्र भी कम हुआ है क्या? जरा नाप के देख लेना कि बहुत गुस्सा हो रहे थे, एकदम गालियां दे रहे थे, वैसा कर रहे थे। पापा ने एक उदाहरण दिया था ना बच्चे का, अपने बेटे को 1000 गालियां देता था रोजीना, पड़ोसी की बेटे की प्रशंसा करता था। क्यों, ऐसा कोई दूसरा नहीं है, अपने ही लोगों में से है, लेकिन फिर भी अंदर से रंच मात्र भी राग और अपनापन कम हुआ हो तो जरा प्रयोग करके देख लेना। इसलिए तो आचार्य कहते हैं कि अंदर में इतनी घोटन है, ये मेरे ये मेरे ये मेरे ये मेरे ये मेरे ये मैं, ये घोटन के लिए उसके विरुद्ध उतनी ही घोटन लगानी पड़ेगी कि ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं। अरे हमारी तुम्हारी बात जाने दो भाई साहब, भरत चक्रवर्ती तो बहुत अच्छी तरह समझते थे कि नहीं समझते थे क्या, कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, मेरे नहीं है। फिर वे शादी पे शादी क्यों ठोकते गए 96,000? ये सब बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि 12 भावनाओं के चिंतमन को प्रतिदिन करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये इनसे एकत्व ममत्व राग इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि इसको इतने निरंतर की इस भावना के बिना वो टूटने वाला नहीं है, समझे ना। अब इसके साथ में ये डोज मिल जाए कि नहीं 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 शरीर तो अपना ही है, संभाल के तो रखना ही पड़ता है, स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही चाहिए, बाल बच्चों का ध्यान तो रखना चाहिए, आखिर भी अपने ही है, ये डोज मिल जाए तो पुराना सारा डोज सब साफ हो जाता है एक मिनट में। एक सच्ची घटना है, जब हम मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो वहाँ एक गुप्ता फैमिली थी, चार भाई थे, एक से बिल्कुल एक जब आते थे तो एक से कपड़े पहनते थे, बिल्कुल पहचान नहीं पाए कि दो हैं एक, बिल्कुल ऐसे पहनते रहते थे प्रेम से। सबसे बड़े भाई का नाम लालचंद था, जैन थे वो, और गुप्ता स्टोर के नाम से वो उनका एक दुकान थी। तो वो बड़ा भाई बीमार हुआ तो उसको ग्वालियर इलाज के लिए ले गए, तो उन्होंने अस्पताल में भर्ती किया और फिर बताया कि ये इतने इंजेक्शन हैं, ये रोजाना लगना चाहिए, वो सारी दवाई वाइयाँ सब बता दी, और अंत में लिखा कि एक ये इंजेक्शन है कि कोई इंजेक्शन रिएक्शन कर जाए तो इस इंजेक्शन को अपने पास रखना हमेशा, तो फटाफट इसे लगा देना, क्या उसे लगाने के पहले इसे अपने पास रखना, तो जिससे वो रिएक्शन बचाव हो जाएगा। वो सब इंतजाम करके लिख के दे दी। अब वो आए केमिस्ट के पास गए, उसने सब दवाइयाँ दे दी, वो जो इंजेक्शन रखा था ना कि एक रखना संभाल के जब रिएक्शन हो जाए तो लगा देना, तो उन्होंने वो भी 30 इंजेक्शन खरीद लिए एक महीने की, एक महीने बाद द्वारा बुलाया था, और रोजाना सब इंजेक्शन लगाते रहे, दवाई खाते रहे, और रोजाना एक इंजेक्शन वो लगा दे। ये सच्ची घटना है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, हम पढ़ते थे तब की बात है, ये सन 51-52 की बात है, माने 50-51 वर्ष पुरानी घटना है सच्ची। उनके बबी वे भाई, तीन भाई तो अभी भी जिंदा हैं और हैं अभी भी मुरैना में। तो वो क्या हुआ कि 30 दिन में उसकी इतनी खराब हालत हो गई कि वैसे मरने की पोजीशन में हो गई, और उनको लेके ग्वालियर गए और जाके उस डॉक्टर से कहा कि ये हाल की ऐसा कैसे हो सकता, इस दवाई पकड़ में आई, दवाई सही है, सब बात सही है, और इसकी ये हालत किसी कीमत पर हो ही नहीं, तुमने मतलब कुछ गड़बड़ की है, हमने साहब कोई गड़बड़ नहीं की, दवाई नहीं ली होगी, हमने दवाई सब ली है, तो कैसे ली बताओ मेरे को। तो उसने सब बताया, ये कहा कि जे इंजेक्शन रोजी ने एक लगा दिया कि वो तो उस दवा को नॉर्मल करने का था, यदि रिएक्शन हो जाए तो उसका असर खत्म करने का था, तो वो दवाइयाँ ली और एक इंजेक्शन वो लगा दिया, तो उन दवाइयों का वो खत्म हो गया और बीमारी आपस अंदर अंदर बढ़ती गई, और वे दवाइयाँ आपस में लड़ती गई, लड़ती रही अंदर, और दवाइयों ने उनके शरीर को अखाड़ा बना लिया, और वो 2-4 दिन के अंदर ही खत्म हो गया, मर गया। अरे भाई, ये तो एंटीडोज था, ये तो आवश्यकता पड़े तब लगाना था क्या? और हमने बताया तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है कि हाँ करना है, कि रोजीना 12 भावनाओं का पाठ किया करे कि हाँ करेंगे, कि शरीर अनित्य है, देह अनित्य है, असरण है, असार है, स्त्री पुत्र देख सब कोई सगे स्वार्थ के साथ ही नहीं है, ये परम अपवित्र है, अपनी देह महा अपवित्र है, और पत्नी की देह तो उससे भी जाना अपवित्र है, क्यों खूब रोजाना चिंतन करना। तो आपने बराबर किया, और रोजाना एक एंटी डोज लगाते गए, शरीर माध्यम खुल धर्म साधनम, शरीर के धर्म करना है तो शरीर को स्वस्थ तो रखना ही चाहिए, और बाल बच्चे आखिर अपने ही हैं, खोटा बेटा खोटा दाम, समय पड़े पे आवे काम क्यों तो क्या हुआ, तो महीने भर बाद आए हमारे पास कि हमने तुम्हारी 12 भावनाओं का खूब चिंतन किया, लेकिन हमारा तो रंच मात्र भी कोई हमें फर्क आया नहीं। तो आता कैसे? क्योंकि साथ में तुम एंटीडोज लगाते गए ना। तो शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखें, फिर बाल बच्चों के साथ प्रेम नहीं करें, तुम क्या चाहते हो? चाहते क्या हो तुम? अरे भाई, हम इतना समझाने के बाद में भी ना शरीर के प्रति राग टूटता है, ना स्त्री पुत्रादि के प्रति प्रेम टूटता है। ये इतना अधिक है कि यदि इससे अनंत भाग टूट जाए, अनंत गुणा टूट जाए, तो भी इतना बाकी बचा रहेगा कि तुम शरीर की संभाल रखोगे और बाल बच्चों से भी राग करोगे। भरत चक्रवर्ती को सम्मर्शन हो गया था ना, मिथ्या तो छूट गया था और फिर भी वो राग बना रहा था ना। ये तो जो अनंत गुणा राग है उस पर हम चोट कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हो? समझे ना, वो अनंतानुबंधी का राग है। अनंत गुणा राग है माने अनंतानुबंधी का राग है, इसलिए तुमको ये चोट कर रहे हैं कि तुम वहां से हटो, इसमें से इस बचड़े में मत पड़ो ज्यादा, ख्याल में है ना। और ये कहता है कि नहीं थोड़ा तो करना चाहिए, थोड़ा तो करना चाहिए। यहाँ ये घंटा का प्रवचन सुनता है और फिर वहां जाकर के और वहां पर ये सुनने लगता है कि थोड़ा तो करना चाहिए, फिर बस नीचे टांगे ऊपर टांगे नाचने सुने ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, उसमें लग जाता है। तो आप क्या चाहते हो कि व्यायाम नहीं करना चाहिए? कौन कहता नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। घूमने नहीं जाना चाहिए कि जाना चाहिए? सवाल जाने और नहीं जाने का नहीं है। स्त्री से तलाक देने की बात यहाँ नहीं कही जा रही है और ना दीक्षा लेने की बात कही जा रही है। भरत चक्रवर्ती ने ली थी, तुमसे अभी क्या जल्दी अपेक्षा करें? आदिनाथ ने ली थी, 83 लाख पूर्व तक नहीं ली थी। क्यों? सिर्फ ये कहते हैं कि तुम्हें इतना एकत्वमत्व राग है कि तुम रोजाना दिन ना रात चोट करोगे तो मरते दम तक मुश्किल से इतना नहीं छूटेगा कि तुम्हारे जो छूट जाए, घबराओ मत, तब भी इतना तो बना रहेगा। लेकिन जो अति राग से तुम अति भक्षण करते हो, अभक्षकों का भक्षण करते हो, उससे तुम्हारी देह और खराब होती है। तुम जरा देह की उपेक्षा तो करके देखो, इसे रूखा सूखा खिला के तो देखो स्वस्थ रहती है कि नहीं रहती है, बोलो। इसे पुष्ट करने के लिए जो तुम माल मसाले खिलाते हो, इससे देह भी खराब होती है और आत्मा भी खराब होता है। समझिए ना, ऐसा लगता है कि हम स्वास्थ्य के विरोधी हैं और घर में परिवार में लोग शांति और प्रेम से रहें, झगड़े नहीं, हम जैसे इसका विरोध कर रहे हैं और हम ये चाहते होंगे घर घर में झगड़े हो जाएं। ये चाहते होंगे हमारे आचार्य? इसलिए कहते भाई ये बात सत्य, इस बात में कोई दम नहीं है। ये जो आचार्यों ने बहुत सोच समझ के किया है, वो चक्रवर्ती भी 12 भावना रोजाना पढ़ता है, वैराग भावना रोजाना पढ़ता है, फिर भी जितना शुद्ध सात्विक प्रेम स्नेह उसका अपने परिवार के साथ होता है और जितना स्वस्थ शरीर उसका होता है, किसी का नहीं होता है। हमारे मुनिराज है ना, जिनने देह से एकत्वमत्व तो छोड़ दिया है और कुछ देह की परवाह नहीं करते हैं, 32 अंतराय टालकर 40 दोष टालकर आहार मिले तो लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं। लेकिन जितने स्वस्थ वे रहते हैं, जितने तुम दिन में तीन दफे खाने वाले रहते हो, इसलिए तुम्हारा ये भ्रम है कि हम बहुत माल मसाला खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और पत्नी आदि से खूब राग करेंगे तो हमारा वो बढ़ेगा। ये तो झगड़े का कारण है ज्यादा राग करना। इस सीमा में राग रहेगा और सीमा में देह से राग रहेगा तो ये देह स्वस्थ रहेगी, क्योंकि जितने लोग मरते हैं वो ओवर डाइटिंग से मरते हैं। कम से कम आप लोग जो यहाँ बैठे मेरी बात सुन रहे हैं, उसमें से कोई आदमी भूखों से मरने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। अखबारों में आता होगा और मरता होगा, हमारी बात अलग है नहीं कि मर जाते हैं, भूख से भी लोग मरते होंगे। लेकिन ये जितने ज्यादा लोग ओवर डाइटिंग से मरते हैं, क्यों? ज्यादा खाने से मरते हैं। एक घी नहीं खाने से मरने वाले की मुझे एक आध बताओ, लेकिन एक घी खा कर मरने वालों की मैं सैकड़ों की लिस्ट बता दूं। जितने भी हार्ट अटैक होते हैं ये सब घी खाकर मरने वाले लोग हैं। घी नहीं खाने वाले को एक आध को हार्ट अटैक कभी होता देखा है? क्यों? ये शरीर का 24 घंटा ध्यान रखने वाले लोग 50-60 वर्ष की उम्र में टाँटा से सो जाती है, और ये शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखने वाले हमारे साधु संत मुनिराज 90-90 वर्ष तक के हो जाते हैं। क्यों? न ढंग से खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना नहाने की, ना धोने की, ना कपड़े पहनना, ना सर्दी की, ना गर्मी की। क्यों? कोई फिक्र नहीं करते हैं, और कोई 90-100 वर्ष से पहले जाने का नाम ही नहीं लेता, यानी वो स्वस्थ रहते हैं। अरे स्वस्थ रहने का उपाय तो संयम से रहना है भाई साहब, ये भोगों में लगे रहना इस संयम में ये रास्ता नहीं है स्वस्थ रहने का रास्ता। इसलिए हम कोई शरीर के स्वास्थ्य के विरोधी नहीं हैं, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य के नाम पर निरंतर इस शरीर को और इसके अंदर और माल भर भर कर इसे मौत के मुख में मत डालो और आत्मा का भी अहित मत करो, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। इसलिए सब लोग इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि ये शरीर आत्मा से पृथक पदार्थ है, इससे एकत्व ममत्व राग तोड़ना ही धर्म है। इससे राग रखना, स्त्री पुत्र आदि से राग रखना, ये कभी तीन लोगों तीन काल में धर्म नहीं हो सकता है, ये बात इन 12 भावनाओं में बताई जा रही है। इसको गहराई से समझकर जो लोग आत्मा का निर्णय करेंगे वो अवश्य उनका कल्याण होगा, ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोग, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हैं।